आज की कहानी है मेहनत के रंग, जिसे लिखा है ऋतु खेतान ने। तो चलिए कहानी शुरू करें, मेहनत के रंग। मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई थी, कप कपाते शरीर को थोड़ी राहत मिली। हाँ, चैत्र का महीना जो आने वाला है, मतलब कि रंगों का त्योहार भी तो आने वाला है, जो कि सभी को बहुत पसंदीदा है। होली का नाम लेते ही मन में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। मस्ती का त्योहार भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम किसी को भी रंग लगाकर पानी से भरे गुब्बारे फोड़कर मस्ती कर सकते हैं, और फिर एक ईश्वर में सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। जैसे ही हम यह बोलते हैं, सामने वाले को भी मुस्कुराना ही पड़ता है। हम पांच दोस्तों की मित्र मंडली हमारे मोहल्ले में मशहूर थी। होली के दो चार दिन पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते हैं। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरना, गुलाल के पैकेट बनाना और पक्के रंगों को छिपा कर रखते, बाजार से बड़ी वाली पिचकारी लाना, कुछ खाने का सामान भी जमा कर लेना, यह सब शामिल था हमारी होली की तैयारी में। हम पांच मित्र किसी एक के घर में यह तैयारी करते, उनके मम्मी पापा भी हमारी मदद करते, लेकिन इस बार होली के रंग कुछ अलग हो गए थे। शुभ ने सौरभ से कहा, सौरभ, हाँ भाई, इस बार बंद कमरे में ही किताबों के साथ मनाएंगे। तभी देव बोला, अरे दोस्तों, इस बार हमारे लिए मेहनत के रंग लेकर आई है। होली खेलते तो एक बार ही हैं, कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी हर्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा तो सबसे पसंदीदा त्यौहार है होली, और वह अपने आंसू छिपाने लगा। कुशाक ने हर्ष को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भाई, इस बार हमको अपनी मेहनत का रंग दिखाना है। होली तो हर साल आती है, लेकिन हमारी दसवीं की परीक्षा जीवन में एक ही बार तो आएगी। हाँ, अगर तू चाहे तो। तभी हर्ष ने कुशाग्र के मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं दोस्त, आगे नहीं बोलना, तुम सब सही कह रहे हो, इस बार होली पर हमको मेहनत का रंग ही दिखाना है। और पांचों ने हाथ से हाथ मिलाकर वादा किया कि वे खूब मेहनत करेंगे और रंगों के इस त्यौहार को खुशी से अपने घर में ही मनाएंगे। बच्चों का यह निर्णय सुनकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए थे, उनका साथ देने को भी वो तैयार थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, सभी के परिजन और बच्चे पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। शुभ की मम्मी तो रसोई में ऐसे काम करने लगी थी कि जरा सी आवाज़ भी शुभ की पढ़ाई में दखल ना दे। और देव की माँ ने तो अपने फ़ोन को ही साइलेंट मोड पर रख दिया था। वैसे ही और सबके घर में भी हुआ, हर्ष के पापा भी घर जल्दी आने लगे और सौरभ के पापा ने तो थोड़े दिन अपनी बाहर की यात्रा भी स्थगित कर दी। ऐसा व्यवहार जब बच्चों ने देखा और आपस में बात करने लगे, जब हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इतना त्याग किया है, तो हमको भी तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। इस बीच होली का त्यौहार भी आ गया, सभी ने तिलक होली मनाई और विजय भव का आशीर्वाद दिया। आज परीक्षा का आखिरी दिन है, सभी बहुत उत्साहित थे, पहुँच गए परीक्षा हॉल में और पेपर पूरा कर झूमते हुए घर आ गए। देव की मम्मी ने सब दोस्तों को घर पर बुला लिया। शाम को 4 बजे सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना था, पार्टी गार्डन में ही थी, सभी लोग वहां पहुंचे। अचानक शुभ को पीठ पर जोर से लगा कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट गुलाबी हो चुकी थी। वह कुछ और सोचता उससे पहले ही रंग की बारिश होने लगी। सभी के लिए रंग बिरंगी पिचकारियों की व्यवस्था की गई थी। देव की माँ का यह सरप्राइज होली पार्टी का प्लान सबको बहुत ही पसंद आया। बच्चों की परीक्षा की थकान भी छूमंतर हो गई। रंगों से सरोबार होने के बाद सब ने पेट भर के खाना खाया। आज फिर से पांचों दोस्तों ने हाथ से हाथ मिलाया और जोर से बोले, इस बार की होली मेहनत के रंग वाली होली। अपने बच्चों को संतुष्ट चेहरे माता पिता भी पढ़ रहे थे और उनकी कड़ी मेहनत से वे खुश भी थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार दोस्तों। कहानी है मेहनत के रंग, जिसे लिखा है ऋतु खेतान ने। तो चलिए कहानी शुरू करें, मेहनत के रंग। मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई थी, कप कपाते शरीर को थोड़ी राहत मिली। हाँ, चैत्र का महीना जो आने वाला है, मतलब कि रंगों का त्यौहार भी तो आने वाला है, जो कि सभी को बहुत पसंदीदा है। होली का नाम लेते ही मन में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। मस्ती का त्यौहार भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम किसी को भी रंग लगाकर पानी से भरे गुब्बारे फोड़कर मस्ती कर सकते हैं, और फिर एक ही स्वर में सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। जैसे ही हम यह बोलते हैं, सामने वाले को भी मुस्कुराना ही पड़ता है। हम पांच दोस्तों की मित्र मंडली हमारे मोहल्ले में मशहूर थी। होली के दो चार दिन पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते हैं। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरना, गुलाल के पैकेट बनाना और पक्के रंगों को छिपा कर रखते, बाजार से बड़ी वाली पिचकारी लाना, कुछ खाने का सामान भी जमा कर लेना, यह सब शामिल था हमारी होली की तैयारी में। हम पांच मित्र किसी एक के घर में यह तैयारी करते, उनके मम्मी पापा भी हमारी मदद करते, लेकिन इस बार होली के रंग कुछ अलग हो गए थे। शुभ ने सौरभ से कहा, सौरभ हाँ भाई, इस बार बंद कमरे में ही किताबों के साथ मनाएंगे। तभी देव बोला, अरे दोस्तों, इस बार हमारे लिए मेहनत के रंग लेकर आई है, होली खेलते तो एक बार ही हैं, कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी हर्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा तो सबसे पसंदीदा त्यौहार है होली, और वह अपने आंसू छिपाने लगा। कुशाख ने हर्ष को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भाई, इस बार हमको अपनी मेहनत का रंग दिखाना है। होली तो हर साल आती है, लेकिन हमारी दसवीं की परीक्षा जीवन में एक ही बार तो आएगी। हाँ, अगर तू चाहे तो। तभी हर्ष ने कुशाग्र के मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं दोस्त, आगे नहीं बोलना, तुम सब सही कह रहे हो, इस बार होली पर हमको मेहनत का रंग ही दिखाना है। और पांचों ने हाथ से हाथ मिलाकर वादा किया कि वे खूब मेहनत करेंगे और रंगों के इस त्यौहार को खुशी से अपने घर में ही मनाएंगे। बच्चों का यह निर्णय सुनकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए थे, उनका साथ देने को भी वो तैयार थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, सभी के परिजन और बच्चे पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। शुभ की मम्मी तो रसोई में ऐसे काम करने लगी थी कि जरा सी आवाज़ भी शुभ की पढ़ाई में दखल ना दे। और देव की माँ ने तो अपने फ़ोन को ही साइलेंट मोड पर रख दिया था। वैसे ही और सबके घर में भी हुआ, हर्ष के पापा भी घर जल्दी आने लगे और सौरभ के पापा ने तो थोड़े दिन अपनी बाहर की यात्रा भी स्थगित कर दी। ऐसा व्यवहार जब बच्चों ने देखा और आपस में बात करने लगे, जब हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इतना त्याग किया है, तो हमको भी तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। इस बीच होली का त्यौहार भी आ गया, सभी ने तिलक होली मनाई और विजय भव का आशीर्वाद दिया। आज परीक्षा का आखिरी दिन है, सभी बहुत उत्साहित थे, पहुँच गए परीक्षा हॉल में और पेपर पूरा कर झूमते हुए घर आ गए। देव की मम्मी ने सब दोस्तों को घर पर बुला लिया। शाम को 4 बजे सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना था, पार्टी गार्डन में ही थी, सभी लोग वहां पहुंचे। अचानक शुभ को पीठ पर जोर से लगा कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट गुलाबी हो चुकी थी। वह कुछ और सोचता उससे पहले ही रंग की बारिश होने लगी। सभी के लिए रंग बिरंगी पिचकारियों की व्यवस्था की गई थी। देव की माँ का यह सरप्राइज होली पार्टी का प्लान सबको बहुत ही पसंद आया। बच्चों की परीक्षा की थकान भी छूमंतर हो गई। रंगों से सरोबार होने के बाद सब ने पेट भर के खाना खाया। आज फिर से पांचों दोस्तों ने हाथ से हाथ मिलाया और जोर से बोले, इस बार की होली मेहनत के रंग वाली होली। अपने बच्चों को संतुष्ट चेहरे माता पिता भी पढ़ रहे थे और उनकी कड़ी मेहनत से वे खुश भी थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आंगन का बिरवा, जिसे लिखा है शशि श्रीवास्तव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंगन का बिरवा। पलके मूंदे में आराम की मुद्रा में लेटी थी, तभी सोमिया की आवाज कानों में गूंजी, माँ सलभ जी आए हैं। उसका यह सलभ जी संबोधन मुझे चौंका गया, मैं भीतर तक हिल गई, परंतु मैंने अपने हृदय के भावों को चेहरे पर नहीं प्रकट होने दिया। सहज भाव से सोम्या की तरफ देखकर कहा, ड्राइंग रूम में बिठाओ, अभी आ रही हूँ। उसके जाने के बाद मैं गहरी चिंता में डूब गई। कहाँ चूक हुई मुझसे? यह सलभ अंकल से सलभ जी के बीच का अंतराल अपने भीतर कितना कुछ रहस्य समेटे हुए है। व्यग्र हो उठी मैं। सच में युवा बेटे की माँ होना भी कितना उत्तरदायित्व है। जरा सा ध्यान ना दीजिए तो बीच चौराहे पर इज्जत नीलाम होते देर नहीं लगती। मुझे धैर्य से काम लेना होगा, शीघ्रता अच्छी नहीं। प्रारंभ से ही मैं यह समझती आई हूँ कि बच्चे अपनी माँ की सुंदरता और फुहड़ता का जीता जागता प्रमाण होते हैं। फिर मैं तो शुरू से ही इस विषय से बहुत सजग सतर्क रही हूँ। मैंने संदीप और सोम्या के व्यक्तिगत की कमी को दूर कर बड़े सलीके से सवारा है, तभी तो सभी मुक्त कंठ से मेरे बच्चों को सराहते हैं, साथ में मुझे भी। परंतु फिर यह सोम्या नहीं, इसमें सोम्या का कोई दोष नहीं, उम्र ही ऐसी है उसकी। नहीं नहीं, मैं अपने आंगन की सुंदर सुकोमल बेल को एक बुढ़े जज्जर जीर्ण शीर्ण दरख्त का सहारा ले असमय मुरझाने नहीं दूंगी। अब तक मैं जो अपने बच्चों के लिए करती आई हूँ, वह तो लगभग अपनी क्षमता और लगन के अनुसार सभी माएँ करती हैं। मेरी परख तो तब होगी जब मैं इस अग्नि परीक्षा में खड़ी उतरूंगी। मुझे इस कार्य में किसी का सहारा नहीं लेना है, न मायके का न ससुराल का। मुँह से निकली बात पराई होते कितनी देर लगती है, हवा में उड़ती हैं ऐसी बातें। नहीं नहीं, किसी पर मुझे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने स्तर पर लड़नी है यह लड़ाई। बाहर के कमरे में सोम्या और सलभ की सम्मिलित हंसी की गूंज मुझे चौंका गई। मैं धीमे से उठकर बाहर के कमरे की तरफ चल पड़ी। नमस्ते भाभी जी, सलभ मुस्कुराए। नमस्ते नमस्ते। मेरे चेहरे पर सहज मीठी मुस्कान थी, परंतु अंतर में ज्वालामुखी धधक रही थी। कैसी तबीयत है आपकी, उन्होंने पूछा। अब ठीक हूँ भाई साहब, बस आप लोगों की मेहरबानी से उठ खड़ी हुई हूँ, कहकर मैंने सोम्या को कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। मेहरबानी कैसी भाभी जी, आप जल्दी ठीक ना होती तो अब मैं अपने दोस्त को क्या मुँह दिखाता। मुझे वितृष्णा हो रही थी इस दो मुहे सांप से। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें विदा किया। मन की उदासी जब वातावरण को बोझिल बनाने लगी, तब मैं उठकर धीमे कदमों से बाहर बरामदे में आ बैठी। कुछ खराब स्वास्थ्य और कुछ इनका दूर होना मुझे बेचैन करे जा रहा था, विशेषकर शाम के समय। ऊपर से इस नई चिंता ने मुझे जीते जी अधवारा कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि इनके जाने के बाद कई इस तरह की परेशानियों से घिर जाऊंगी। उस समय तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब इनके लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से निमंत्रण आया था। मेरे पति कृषि विज्ञान संकाय के अध्यक्ष थे, विदेशी विश्वविद्यालय ने उनके कृषि से संबंधित विशेष शोध और विशेष योग्यताओं को देखते हुए अपने यहाँ के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए एक साल हेतु आमंत्रण किया था। यह जाने के विषय में तत्काल निर्णय नहीं कर पाए थे, एक साल का समय कुछ कम नहीं होता, फिर मैं और सोम्या यहाँ अकेली पड़ जाएंगे, वह इस चिंता में थे। संदीप का अभियांत्रिक में चौथा साल था, वह हॉस्टल में था। ससुराल और पिहोर दोनों इतनी दूर थे कि हमेशा किसी की देख रेख संभव नहीं थी। तब मैंने ही इन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर जाने को प्रेरित किया था। ये चिंतित थे, कैसे संभाल पाओगी तुम यह सब अकेले इतने दिन, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, मैं बोली। विश्वास तो पूरा है नेहा, मैं जानता हूँ तुम घर के लिए पूरी तरह समर्पित पत्नी, माँ और सफल शिक्षिका हो, कर्मठ हो, बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी सब हो जाएगा। परंतु इतना अच्छा अवसर आप हाथ से मत जाने दीजिए, बड़े मुश्किल से मिलता है। ऐसे स्वर्णिम अवसर आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं गांव से पहली बार शहर आई हूँ, मैंने हंसते हुए कहा था। तुम जानती हो नेहा, तुम वह बच्चे मेरी कमजोरी हैं, वह भावुक हो उठते थे। मेरे लिए एक साल तुम सब के बिना काटना एक सजा जैसा ही होगा। फिर उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया था। इनके सीने से लगी मैं भी एक साल की दूरी की कल्पना से थोड़ी देर को विचलित हो उठी, परंतु फिर बरबस अपने पर काबू पा लिया। यदि मैं ही कमज़ोर पड़ गई तो यह जाने से साफ इनकार कर देंगे। नहीं नहीं, पति के उज्जवल भविष्य व नाम के लिए मुझे स्वयं को दृढ़ करना होगा। यह सोच मैंने भर आई आंखों के आंसुओं को भीतर ही सोख लिया और मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखकर कहा, एक साल होता ही कितना है, चुटकियों में बीत जाएगा। फिर यह भी तो सोचिए, यह एक साल आपके भविष्य को एक नया आयाम देगा, और फिर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना। पर यह कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है नेहा, उन्होंने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था। वैसे इनका विचलित होना स्वाभाविक ही था। जहाँ इनके मित्रगण विश्वविद्यालय के बाद का समय राजनीति और बैठकबाजी में बिताते थे, वही यह काम के बाद का अधिकांश समय घर के परिवार के साथ बिताते थे। जहाँ भी जाना होता हम साथ ही जाते। अंततः सोच समझ कर यह जाने की तैयारी में लग गए। सभी मित्र परिचितों ने भी इन्हें आश्वस्त कर जाने का प्रेरित किया। ना जाने के बाद मैं और सौम्या अकेले रह गए। इनके जाने से घर में अजीब सा सूनापन घिर आया। मैं अपने विद्यालय चली जाती और सौम्या अपने। सौम्या का इस साल बीए अंतिम वर्ष था। जब कभी इसकी सहेलियां आती तो घर की उदासी उनकी खिलखिलाहट से दूर हो जाती। समय जैसे तैसे कट रहा था। इधर सौम्या कुछ अनमनी सी रहने लगी थी। पिता की दूरी उसे कुछ ज़्यादा ही खल रही थी। हाँ, इस बीच इनके मित्र कभी अकेले कभी परिवार सहित आकर हाल चाल पूछ लिया करते थे। मेरी सहयोगी शिक्षिकाएँ भी बहुत आती थी, विशेषकर इनके मित्र सलभ जी और मेरी सखी मीरा। सलभ इनके परम मित्रों में से थे, इनके विभाग में ही लीडर थे एवं अभी तक कुंवारे ही थे। बड़ा मिलनसार स्वभाव था और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व। आते तो घंटों बातों करते। सौम्या भी उनसे काफ़ी हिल मिल गई थी। मीरा मेरी सहयोगी प्राध्यापिका और गणित सहेली थी। हम दोनों के विचारों में अद्भुत श्याम अंतरंगता स्थापित करने में सहायक हुआ था। मन की बातें, उलझने, दुख सुख आपस में बताकर हम हल्की हो लेती थी। उसके पति डॉक्टर थे तथा दो बेटे थे, अक्षय और अभय। अक्षय का इसी साल PCS में चयन हुआ था। सत्र की समाप्ति के बाद संदीप भी आ गया था। उसके आने से घर को थोड़ी रौनक आ गई थी। दोनों भाई बहन नित नए कार्यक्रम बनाते और मुझे भी उनके साथ देना पड़ता। दोनों के दोस्तों और सहेलियों से घर भर उठता। बच्चों के बीच मैं भी हंस बोल लेती, पर मन का कोई कोना खाली खाली उदास रहता था। इनकी यादों की कसक टीस देती रहती थी। वैसे भी उम्र के इस तीसरे पहर में साथी की दूरी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देती है। पति पत्नी एक दूसरे की आदत में शामिल हो जाते हैं। इनके लंबे लंबे पत्र आते, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारी बातें लिख देते। जिस दिन पत्र मिलता मैं और सौम्या बार बार पढ़ते। कई दिन तक मन तरोताज़ा खुश रहता। फिर दूसरे पत्र का इंतजार शुरू हो जाता। एक दिन विद्यालय में कक्षा लेते समय एकाएक जोर का चक्कर आ जाने से मैं गिर पड़ी। छात्राओं तथा मेरे अन्य सहयोगियों ने मिलकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप बताया और कम से कम एक महीना पूरे आराम की सलाह दी। इस बीच सौम्या बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपना विद्यालय और फिर मुझे तीनों को संभालना उसे अकेली के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब सलभ जी और मीरा ने काफ़ी सहारा दिया था। मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए जो भी आता उसको सौम्या से ही बात होती थी। हाँ, मीरा आती तो विद्यालय के समाचार मिलते रहते। सलभ जी भी मुझसे हाल पूछ सौम्या से ही अधिकतर बातें करते रहते। इधर सलभ जी और सौम्या में काफ़ी पटने लगी। आश्चर्य तब होता जब मेरे सामने आते ही दोनों असहज होने लगते। बस इसी बात ने मुझे चौंकन्ना किया। सलभ जी और सौम्या, बाप बेटी का अंतर, इनसे बस दो चार साल ही छोटे होंगे वह। कन पट्टियों पर से सफ़ेद बाल, इकहरा शरीर, चुस्त दुरुस्त पोशाक और बातें करने का अपना एक विशिष्ट आकर्षण अंदाज, सब मिलाकर मर्दाना खूबसूरती का प्रतीक। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा हाल पूछने आए सलब मेरा हाल पूछना भूल खड़े खड़े ही सौम्या को आवाज़ लगाते, सौम्या आओ तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, बोर हो रही होगी। और सौम्या भी अभी आई कहकर झट अपनी खूबसूरत पोशाक पहनकर सैंडल खटखटाती बाहर निकल जाती। सौम्या तो खैर अभी कच्ची उम्र की ना समय लड़की थी, पर इस परिपक्व प्रौढ़ की बेहाई देख मैं दंग थी। सोचती क्या देहिक भूख इतनी प्रबल हो उठती है कि सारे समीकरण, सारी परिभाषाएं इस तृष्णा के बीच अपनी पहचान खो बोनी हो जाती हैं। नैतिकता अतृप्ति की अंधी अंतहीन गलियों में कहीं गुम हो जाती है। शायद हाँ, तभी तो जिस वर्जित फल का सलब अपनी जवानी के दिनों में रस स्वादन ना कर सके, इस पक्की उम्र में उसके लोभ से स्वयं को बचा पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। वैसे भी बुढ़ापे में अगर मन विचलित हो जाए तो उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। इस पर सुकोमल, कमनीय, सुंदर सौम्या दिन भर भ्रमित हो उठते थे सलब जी, पर आए दिन उसके लिए उपहार लाने लगे, कभी सलवार कुर्ता, कभी स्कर्ट ब्लाउज, तो कभी नाइटी। सौम्या भी उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेती। दो तीन बार सलब जी ने कहा, भाई साहब आप इसकी आदतें खराब कर रहे हैं, कितनी सारी पोशाकें तो हैं इसके पास, क्यों क्या मैं इसे कुछ नहीं दे सकता, इतना अधिकार भी नहीं है मुझे, बहुत स्नेह है मुझे इससे, कहकर वह प्यार भरी नज़रों से सौम्या की तरफ देखते। उस दृष्टि में किसी बुजुर्ग का निश्चल स्नेह नहीं झलकता था, बल्कि वह किसी उच्च संकृत प्रेमी की वासनामय काक दृष्टि थी। मुझे लगता कपटी पुरुष स्नेह का मुखौटा लगा उसकी इस नादानी और भोलेपन का लाभ उठा उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। मेरे सामने यह समस्या एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी थी। इनके वापस आने में अभी 7 महीने बाकी थे। संदीप का यह अंतिम वर्ष था, उससे कुछ कहना भी उचित नहीं था। प्रश्नों और संदेहों के चक्रव्यूह में उलझी मैं इस समस्या को घेरे से निकलने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी। तभी निराशा के गहन अंधकार में दीपशिखा की ज्योति से चमके थे मीरा के ये शब्द, नेहा सौम्या को तो तू मुझे सौंप दे, अच्छे के लिए तुझे लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा, और मुझे सुगड़ बहू सोच ले, यह लड़की तेरी खटिया खड़ी कर देगी, फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं, वह तू मुझ पर छोड़ दे। और फिर हम दोनों खूब हंस पड़े। मीरा के कहे इन शब्दों ने मुझे डूबते को दिनके का सहारा दिया। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, मीरा आज तो सब परिवार मेरे घर खाने पर आ जा, अक्षय अभय से मिले भी बहुत दिन हो गए हैं, रात का खाना साथ ही खाएंगे। क्यों एकाएक तुझे ज़्यादा शक्ति आ गई है क्या, कहे तो 10-20 लोगों को और साथ ले आओ, उसने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं आज मन बहुत उबरा है, सोचा घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। अच्छा जी तो अब हम नौटंकी के कलाकार हो गए, ठीक है भाई आ जाएंगे सरकार का मनोरंजन करने। मन मस्तिष्क पर छाया तनाव का कूड़ा काफ़ी हद तक छट चुका था और मैं नए उत्साह से शाम की तैयारी में जुट गई। रम्या को निर्देश देकर मैंने कई चीज़ें बनवा ली थी। सौम्या ने सारी तैयारियां देखकर कहा था, क्या बात है आज आप बहुत मूड में हैं, और ये इतना सारा खाना क्यों बना है। बस यूँ अब तबीयत एकदम ठीक है और शाम को मीरा, अक्षय, अभय और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, खाना यही खाएंगे। अक्षय नौकरी मिलने के बाद से पहली बार घर आया है ना, तो मैंने सोचा एक बार खाने पे बुला लूँ। हाँ तू भी घर पर ही रहना, मैंने कहा। पर माँ मेरा तो सलभ जी के साथ फिल्म देखने का कार्यक्रम था। देख बेटी फिल्म तो कल भी देखी जा सकती है, आंटी सबके साथ आ रही है, ते मेरे सिवा एक तू ही है तो घर में, तू भी चली जाएगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। ऐसा कर तू सलभ अंकल को फ़ोन करके बता दे कि तू नहीं जा पाएगी, मैंने भीतर की चिड़ को दबाते हुए प्यार से कहा। ठीक है माँ, सौम्या ने अनमने ढंग से कहा। शाम को मीरा, डॉक्टर साहब, अक्षय, अभी सभी आ गए। विनोदी स्वभाव के डॉक्टर साहब ने आते ही कहा, बीमारी से उठने के बाद तो आप और भी तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही हैं नेहा जी, क्यों मेरी सहेली पर नियत खराब करते हो इस बुढ़ापे में, मीरा ने पति को टोका। लो सारी जवानी तो तुमने दाएं बाएं देखने नहीं दिया, अब इस बुढ़ापे में तो बख्श दो, उनकी इस बात पर जोर खटाक लगा। सौम्या ने बड़ी तत्परता और उत्साह से उन सबका स्वागत किया। कॉफ़ी नाश्ता के बाद वह अक्षय अभय से बातें करने लगी। मैंने अक्षय की ओर दृष्टि घुमाई। ऊंचा लंबा अक्षय, चेहरे पर शालीन मुस्कुराहट, दम्भ का नामो निशान नहीं, हसमुख मिलनसार स्वभाव, सब सौम्या के साथ कितना सटीक लगेगा, मैं सोचने लगी। डॉक्टर साहब और मीरा के साथ बातें करते हुए मेरे मन का जोर अक्षय और सौम्या की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए बैठा था। मैंने अक्षय की आंखों में सौम्या के लिए प्रशंसा के भाव तैरते देख लिए। मन थोड़ा अस्वस्थ हुआ, परंतु अभी सौम्या की प्रतिक्रिया देखना बाकी थी। बातों के बीच सौम्या ने कुशलता से खाना मेज पर लगा दिया। डॉक्टर साहब और मीरा तो सौम्या के सलीके से परिचित थे ही, सौम्या के मोहक रूप और दक्षता से अक्षय पर भी काफ़ी प्रभाव डाला। खुशगवार माहौल में खाना खत्म हुआ तो अक्षय ने कहा, आंटी आपसे मिले और आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए बहुत दिन हो गए। आज की यह शाम बहुत दिनों तक याद रहेगी। विदा होने तक अक्षय की मुग्ध दृष्टि सौम्या पर टिकी रही और सौम्या हंसती बोलती भी बीच बीच में कुछ सोचती सी लगी, मानो बड़े असमंजन में हो। चलते चलते डॉक्टर साहब ने मीरा को छेड़ा, मैडम आप सिर्फ खाना ही जानती हैं या खिलाना भी? मीरा ने उन्हें प्यार भरी नज़रों से घूरा और झट से मुझे और सौम्या को दूसरे दिन रात के खाने का न्योता दे डाला। मेरे लिए तो यह मुँह मांगी मुराद थी, अक्षय और सौम्या को समीप करने के लिए। दूसरे दिन जब सलभ जी आए तो सौम्या ने कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। फिल्म के लिए जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा, आज मीरा आंटी के यहाँ जाना है माँ के साथ, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह थोड़ी देर बैठने के बाद चले गए। मैं भीतर ही भीतर पुलकित हो गई। मुझे लगा कि प्रकृति शायद स्वयं सौम्या को समझा रही है और मैं भी यही चाहती थी। दूसरे दिन शाम को मीरा के यहाँ जाने के लिए तैयार होने से पहले मैंने सौम्या से कहा, सौम्या आज तू गुलाबी साड़ी पहन ले। कौन सी? वह जॉर्जेट की जरी किनारी वाली? हाँ हाँ वही। इस साड़ी के लिए हमेशा ना नुकुर करने वाले सौम्या ने आज चुपचाप वही साड़ी पहन ली। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। गुलाबी साड़ी में खूबसूरत सौम्या का रूप और भी निखर आया था। ना चाहते हुए एक बार फिर मेरी दृष्टि उसके ऊपर चली गई। अब पलक थकी थी। कुछ क्षण तक मैं अपने मोहक सलोनी बेटी का प्रतिम अनुपम निर्दोष सौंदर्य चेहरा देखती रही। चलिए ना माँ, क्या सोचने लगी, सौम्या ने ही उबारा था इस स्थिति से। मीरा के घर पहुँचते पहुँचते हल्की सांझ गिराई थी। डॉक्टर साहब, मीरा, अक्षय सभी लॉन में ही बैठे थे। अभय शायद अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। हम दोनों जब उनके समीप पहुँचे तो सभी की दृष्टि कुछ पल के लिए सौम्या पर स्थिर हो गई। मैंने अक्षय की ओर देखा तो पाया कि मंत्रविद से सम्मोहित उसकी आंखें पलक झपकना भूल सौम्या को एकटक निगाहें जा रही थी। अरे भाई, इन्हें बिठाओगे भी कि तुम लोग भी खड़े खड़े ही विदा कर दोगे? डॉक्टर साहब ने सम्मोहन भंग किया। अरे हाँ हाँ बैठो नेहा, मीरा ने कहा और फिर हाथ पकड़कर अपने पास ही सौम्या को भी बिठाते हुए बोली, नेहा आज मेरी नज़र सौम्या को जरूर लगेगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरी भी, डॉक्टर साहब ने जोड़ा। सौम्या शर्मा उठी। अंकल क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हो? इसलिए कि तू और लंबी हो जाए, उन्होंने पट से कहा और जोर से हंस पड़े। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मीरा कॉफ़ी बनाने उठी थी, पर सौम्या ने तुरंत उन्हें बिठा दिया। कॉफ़ी मैं बनाती हूँ आंटी, आप लोग बातें कीजिए। हाँ हाँ मैं भी यही चाह रहा था बेटी, इनके हाथ का काढ़ा पीने से बेहतर है ठंडा पानी पीकर संतोष कर लिया जाए। डॉक्टर साहब ने मीरा को तिरछी दृष्टि से देखकर कहा तो हम सभी हंस पड़े। सौम्या उठी तो अक्षय ने तुरंत कहा, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। दोनों को साथ साथ जाते देख डॉक्टर साहब बोले, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। सच? मीरा ने समर्थन किया। फिर मुझसे बोली, नेहा सौम्या मुझे और इन्हें बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय भी उससे प्रभावित है, क्योंकि अभी तक तो शादी के नाम पर 36 बहाने बनाता था, परंतु कल जब मैंने सौम्या के लिए पूछा तो मुस्कुरा कर रह गया। अब अच्छी नौकरी में भी आ गया है, मुझे इसकी शादी करनी ही है। नेहा अगर कहे तो अभी मंगनी कर देते हैं, शादी भाई साहब के आने पर कर देंगे, वैसे तू सौम्या से पूछ ले। हर्ष के अतिरिक्त से मेरी आंखें भर रही। मीरा ने मुझे किस मनोस्थिति से उबारा था इसका रंच मात्र भी आभास नहीं था। भरे गले से मैं उससे बोली, मेरी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा मीरा, मैं नहीं जानती थी उसे क्या पूछूं? अक्षय जैसा लड़का, ऐसे साथ सरूर, इतना अच्छा परिवार, सब मुझे तो घर बैठे हीरा मिल गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस बुद्धू अक्षय के हिस्से में ऐसा चांद का टुकड़ा आएगा, मीरा बोली। और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी हसीन समझिन मिलेगी, डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा। तो हम सब एक बार फिर हंस पड़े। तभी एकाएक चौंक पड़े थे डॉक्टर साहब। अरे भाई, यह कबूतरों की जोड़ी कॉफ़ी उगा रही है क्या अंदर? तब मैं और मीरा रसोई की तरफ चली, पर द्वार पर ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मीरा ने मेरा हाथ धीरे से दबाकर अंदर की ओर इशारा किया तो मैंने देखा अंदर गैस पर रखी हुई काफ़ी उबल उबल कर गिर रही है और सामने अक्षय सौम्या का हाथ थामे धीमे स्वर में कुछ कुछ कह रहा है। सौम्या की बड़ी बड़ी हिरनी सी आँखें शर्म से झुकी हुई थी और पतले गुलाबी होठों पर मीठी प्यारी सी मुस्कान थी। मैं और मीरा धीमे कदमों से बाहर चली आई। उफनती नदी का चंचल बहाव प्रकृति ने सही दिशा की ओर मोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आंगन का बिरवा, जिसे लिखा है शशि श्रीवास्तव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंगन का बिरवा। पलके मूंदे मैं आराम की मुद्रा में लेटी थी तभी सौम्या की आवाज कानों में गूंजी, माँ सलभ जी आए हैं। उसका यह सलभ जी संबोधन मुझे चौंका गया, मैं भीतर तक हिल गई, परंतु मैंने अपने हृदय के भावों को चेहरे पर नहीं प्रकट होने दिया। सहज भाव से सौम्या की तरफ देखकर कहा, ड्राइंग रूम में बिठाओ, अभी आ रही हूँ। उसके जाने के बाद मैं गहरी चिंता में डूब गई। कहाँ चूक हुई मुझसे? यह सलभ अंकल से सलभ जी के बीच का अंतराल अपने भीतर कितना कुछ रहस्य समेटे हुए है। व्यग्र हो उठी मैं। सच में युवा बेटी की माँ होना भी कितना उत्तरदायी है। जरा सा ध्यान ना दीजिए तो बीच चौराहे पर इज्जत नीलाम होते देर नहीं लगती। मुझे धैर्य से काम लेना होगा, शीघ्रता अच्छी नहीं। प्रारंभ से ही मैं यह समझती आई हूँ कि बच्चे अपनी माँ की सुंदरता और फुहड़ता का जीता जागता प्रमाण होते हैं। फिर मैं तो शुरू से ही इस विषय से बहुत सजग सतर्क रही हूँ। मैंने संदीप और सौम्या के व्यक्तिगत की कमी को दूर कर बड़े सलीके से संवारा है, तभी तो सभी मुक्त कंठ से मेरे बच्चों को सराहते हैं, साथ में मुझे भी। परंतु फिर यह सौम्या नहीं, इसमें सौम्या का कोई दोष नहीं, उम्र ही ऐसी है उसकी। नहीं नहीं, मैं अपने आंगन की सुंदर सुकोमल बेल को एक बुढ़े जज्जर जिन शिन दरख्त का सहारा ले असमय मुरझाने नहीं दूंगी। अब तक मैं जो अपने बच्चों के लिए करती आई हूँ वह तो लगभग अपनी क्षमता और लगन के अनुसार सभी माएँ करती हैं। मेरी परख तो तब होगी जब मैं इस अग्नि परीक्षा में खड़ी उतरूंगी। मुझे इस कार्य में किसी का सहारा नहीं लेना है, न मायके का न ससुराल का। मुँह से निकली बात पराई होते कितनी देर लगती है, हवा में उड़ती हैं ऐसी बातें। नहीं नहीं, किसी पर मुझे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने स्तर पर लड़नी है यह लड़ाई। बाहर के कमरे में सौम्या और सलभ की सम्मिलित हंसी की गूंज मुझे चौंका गई। मैं धीमे से उठकर बाहर के कमरे की तरफ चल पड़ी। नमस्ते भाभी जी, सलभ मुस्कुराए। नमस्ते नमस्ते, मेरे चेहरे पर सहज मीठी मुस्कान थी परंतु अंतर में ज्वालामुखी धधक रही थी। कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने पूछा। अब ठीक हूँ भाई साहब, बस आप लोगों की मेहरबानी से उठ खड़ी हुई हूँ, कहकर मैंने सौम्या को कॉफ़ी बदान आने के लिए कहा। मेहरबानी कैसी भाभी जी, आप जल्दी ठीक ना होती तो अब मैं अपने दोस्त को क्या मुँह दिखाता। मुझे वितृष्णा हो रही थी इस दो मुहे सांप से। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें विदा किया। मन की उदासी जब वातावरण को बोझिल बनाने लगी तब मैं उठकर धीमे कदमों से बाहर बरामदे में आ बैठी। कुछ खराब स्वास्थ्य और कुछ इनका दूर होना मुझे बेचैन करे जा रहा था, विशेषकर शाम के समय। ऊपर से इस नई चिंता ने मुझे जीते जी अधमरा कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि इनके जाने के बाद कई इस तरह की परेशानियों से घिर जाऊंगी। उस समय तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब इनके लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से निमंत्रण आया था। मेरे पति कृषि विज्ञान संकाय के अध्यक्ष थे। विदेशी विश्वविद्यालय ने उनके कृषि से संबंधित विशेष शोध और विशेष योग्यताओं को देखते हुए अपने यहाँ के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए एक साल हेतु आमंत्रण किया था। यह जाने के विषय में तत्काल निर्णय नहीं कर पाए थे। एक साल का समय कुछ कम नहीं होता, फिर मैं और सोम्या यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, वह इस चिंता में थे। संदीप का अभियांत्रिकी में चौथा साल था। वह हॉस्टल में था। ससुराल और पिहोर दोनों इतनी दूर थे कि हमेशा किसी की देख रेख संभव नहीं थी। तब मैंने ही इन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर जाने को प्रेरित किया था। ये चिंतित थे, कैसे संभाल पाओगी तुम यह सब अकेले इतने दिन, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, मैं बोली। विश्वास तो पूरा है नेहा, मैं जानता हूँ तुम घर के लिए पूरी तरह समर्पित पत्नी, माँ और सफल शिक्षिका हो, कर्मठ हो, बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी सब हो जाएगा। परंतु इतना अच्छा अवसर आप हाथ से मत जाने दीजिए, बड़े मुश्किल से मिलता है ऐसे स्वर्णिम अवसर। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं गांव से पहली बार शहर आई हूँ, मैंने हंसते हुए कहा था। तुम जानती हो नेहा, तुम वह बच्चे मेरी कमजोरी हैं, वह भावुक हो उठते थे। मेरे लिए एक साल तुम सब के बिना काटना एक सजा जैसा ही होगा। फिर उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया था। इनके सीने से लगी मैं भी एक साल की दूरी की कल्पना से थोड़ी देर को विचलित हो उठी, परंतु फिर बरबस अपने पर काबू पा लिया। यदि मैं ही कमजोर पड़ गई तो यह जाने से साफ इनकार कर देंगे। नहीं नहीं, पति के उज्जवल भविष्य व नाम के लिए मुझे स्वयं को दृढ़ करना होगा। यह सोच मैंने भर आई आंखों के आंसुओं को भीतर ही सोख लिया और मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखकर कहा, एक साल होता ही कितना है, चुटकियों में बीत जाएगा। फिर यह भी तो सोचिए, यह एक साल आपके भविष्य को एक नया आयाम देगा, और फिर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना। पर यह कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है नेहा, उन्होंने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था। वैसे इनका विचलित होना स्वाभाविक ही था। जहाँ इनके मित्रगण विश्वविद्यालय के बाद का समय राजनीति और बैठकबाजी में बिताते थे, वही यह काम के बाद का अधिकांश समय घर के परिवार के साथ बिताते थे। जहाँ भी जाना होता हम साथ ही जाते। अंततः सोच समझ कर यह जाने की तैयारी में लग गए। सभी मित्र परिचितों ने भी इन्हें आश्वस्त कर जाने का प्रेरित किया। ना जाने के बाद मैं और सोम्या अकेले रह गए। इनके जाने से घर में अजीब सा सूनापन घिर आया। मैं अपने विद्यालय चली जाती और सोम्या अपने। सोम्या का इस साल बीए अंतिम वर्ष था। जब कभी इसकी सहेलियां आती तो घर की उदासी उनकी खिलखिलाहट से दूर हो जाती। समय जैसे तैसे कट रहा था। इधर सोम्या कुछ अनमनी सी रहने लगी थी। पिता की दूरी उसे कुछ ज़्यादा ही खल रही थी। हाँ, इस बीच इनके मित्र कभी अकेले कभी परिवार सहित आकर हालचाल पूछ लिया करते थे। मेरी सहयोगी शिक्षिकाएं भी बहुत आती थी, विशेषकर इनके मित्र सलभ जी और मेरी सखी मीरा। सलभ इनके परम मित्रों में से थे, इनके विभाग में ही लीडर थे एवं अभी तक कुंवारे ही थे। बड़ा मिलनसार स्वभाव था और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व। आते तो घंटों बातों करते। सोम्या भी उनसे काफ़ी हिल मिल गई थी। मीरा मेरी सहयोगी प्राध्यापिका और गणित सहेली थी। हम दोनों के विचारों में अद्भुत श्याम अंतरंगता स्थापित करने में सहायक हुआ था। मन की बातें, उलझने, दुख सुख आपस में बताकर हम हल्की हो लेती थी। उसके पति डॉक्टर थे तथा दो बेटे थे, अक्षय और अभय। अक्षय का इसी साल PCS में चयन हुआ था। सत्र की समाप्ति के बाद संदीप भी आ गया था। उसके आने से घर को थोड़ी रौनक आ गई थी। दोनों भाई बहन नित नए कार्यक्रम बनाते और मुझे भी उनके साथ देना पड़ता। दोनों के दोस्तों और सहेलियों से घर भर उठता। बच्चों के बीच मैं भी हंस बोल लेती, पर मन का कोई खोना खाली खाली उदास रहता था। इनकी यादों की कसक टीस देती रहती थी। वैसे भी उम्र के इस तीसरे पहर में साथी की दूरी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देती है। पति पत्नी एक दूसरे की आदत में शामिल हो जाते हैं। इनके लंबे लंबे पत्र आते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारी बातें लिख देते। जिस दिन पत्र मिलता, मैं और सोमिया बार बार पढ़ते। कई दिन तक मन तरोताज़ा खुश रहता। फिर दूसरे पत्र का इंतजार शुरू हो जाता। एक दिन विद्यालय में कक्षा लेते समय एकाएक जोर का चक्कर आ जाने से मैं गिर पड़ी। छात्राओं तथा मेरे अन्य सहयोगियों ने मिलकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप बताया और कम से कम एक महीना पूरे आराम की सलाह दी। इस बीच सोम्या बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपना विद्यालय और फिर मुझे तीनों को संभालना उसे अकेली के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब सलभ जी और मीरा ने काफ़ी सहारा दिया था। मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए जो भी आता उसको सोम्या से ही बात होती थी। हाँ, मीरा आती तो विद्यालय के समाचार मिलते रहते। सलभ जी भी मुझसे हाल पूछ सोम्या से ही अधिकतर बातें करते रहते। इधर सलभ जी और सोम्या में काफ़ी पटने लगी। आश्चर्य तब होता जब मेरे सामने आते ही दोनों असहज होने लगते। बस इसी बात ने मुझे चौंकन्ना किया। सलभ जी और सोम्या, बाप बेटी का सा अंतर, इनसे बस दो चार साल ही छोटे होंगे। वह कनपट्टियों पर से सफ़ेद बाल, इकहरा शरीर, चुस्त दुरुस्त पोशाक और बातें करने का अपना एक विशिष्ट आकर्षण अंदाज, सब मिलाकर मर्दाना खूबसूरती का प्रतीक। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा हाल पूछने आए सलभ मेरा हाल पूछना भूल खड़े खड़े ही सोम्या को आवाज़ लगाते। सोम्या आओ, तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, बोर हो रही होगी। और सोम्या भी अभी आई कहकर झट अपनी खूबसूरत पोशाक पहनकर सैंडल खटखटाती बाहर निकल जाती। सोम्या तो खैर अभी कच्ची उम्र की नासमझ लड़की थी, पर इस परिपक्व प्रौढ़ की बेहाई देख मैं दंग थी। सोचती, क्या दैहिक भूख इतनी प्रबल हो उठती है कि सारे समीकरण, सारी परिभाषाएं इस तृष्णा के बीच अपनी पहचान खो बोनी हो जाती हैं। नैतिकता अतृप्ति की अंधी अंतहीन गलियों में कहीं गुम हो जाती है। शायद हाँ, तभी तो जिस वर्जित फल का सलभ अपनी जवानी के दिनों में रस स्वादन ना कर सके, इस पक्की उम्र में उसके लोभ से स्वयं को बचा पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। वैसे भी बुढ़ापे में अगर मन विचलित हो जाए तो उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। इस पर सुकोमल, कमनीय, सुंदर सोम्या दिन भर भ्रमित हो उठते थे सलभ जी, पर आए दिन उसके लिए उपहार लाने लगे। कभी सलवार कुर्ता, कभी स्कर्ट ब्लाउज, तो कभी नाइटी। सोम्या भी उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेती। दो तीन बार सलभ जी ने कहा, भाई साहब, आप इसकी आदतें खराब कर रहे हैं, कितनी सारी पोशाकें तो हैं इसके पास। क्यों, क्या मैं इसे कुछ नहीं दे सकता? इतना अधिकार भी नहीं है मुझे, बहुत स्नेह है मुझे इससे, कहकर वह प्यार भरी नज़रों से सोम्या की तरफ देखते। उस दृष्टि में किसी बुजुर्ग का निश्चल स्नेह नहीं झलकता था, बल्कि वह किसी उच्च संकटित प्रेमी की वासनामय काक दृष्टि थी। मुझे लगता कपटी पुरुष स्नेह का मुखौटा लगा, उसकी इस नादानी और भोलेपन का लाभ उठा, उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। मेरे सामने यह समस्या एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी थी। इनके वापस आने में भी 7 महीने बाकी थे। संदीप का यह अंतिम वर्ष था, उससे कुछ कहना भी उचित नहीं था। प्रश्नों और संदेहों के चक्रव्यूह में उलझी मैं इस समस्या को घेरे से निकलने के लिए पूरी तरह हाथ पैर मार रही थी। तभी निराशा के गहन अंधकार में दीप शिखा की ज्योति से चमके थे मीरा के ये शब्द, नेहा, सोम्या को तो तू मुझे सौंप दे, अच्छे के लिए तुझे लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मुझे सुगड़ बहू, सोच ले, यह लड़की तेरी खटिया खड़ी कर देगी, फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं। वह तू मुझ पर छोड़ दे। और फिर हम दोनों खूब हंस पड़े। मीरा के कहे इन शब्दों ने मुझे डूबते को दिनके का सहारा दिया। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, मीरा आज तू सब परिवार मेरे घर खाने पर आ जा, अक्षय अभय से मिले भी बहुत दिन हो गए हैं, रात का खाना साथ ही खाएंगे। क्यों, एक तुझे ज़्यादा शक्ति आ गई है क्या? कहे तो 10-20 लोगों को और साथ ले आओ, उसने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, आज मन बहुत उबरा है, सोचा घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम नौटंकी के कलाकार हो गए। ठीक है भाई, आ जाएंगे सरकार का मनोरंजन करने। मन मस्तिष्क पर छाया तनाव का कूड़ा काफ़ी हद तक छट चुका था और मैं नए उत्साह से शाम की तैयारी में जुट गई। रम्या को निर्देश देकर मैंने कई चीज़ें बनवा ली थी। सौम्या ने सारी तैयारियां देखकर कहा था, क्या बात है, आज आप बहुत मूड में हैं, और ये इतना सारा खाना क्यों बना है? बस यूँ, अब तबीयत एकदम ठीक है और शाम को मीरा, अक्षय, अभय और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, खाना यही खाएंगे। अक्षय नौकरी मिलने के बाद से पहली बार घर आया है ना, तो मैंने सोचा एक बार खाने पे बुला लूँ। हाँ, तू भी घर पर ही रहना, मैंने कहा। पर माँ, मेरा तो सलभ जी के साथ फिल्म देखने का कार्यक्रम था। देख बेटी, फिल्म तो कल भी देखी जा सकती है, आंटी सबके साथ आ रही है, मेरे सिवा एक तू ही है तो घर में, तू भी चली जाएगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। ऐसा कर, तू सुलभ अंकल को फ़ोन करके बता दे कि तू नहीं जा पाएगी, मैंने भीतर की चिड़ को दबाते हुए प्यार से कहा। ठीक है माँ, सौम्या ने अनमने ढंग से कहा। शाम को मीरा, डॉक्टर साहब, अक्षय, अभी सभी आ गए। विनोदी स्वभाव के डॉक्टर साहब ने आते ही कहा, बीमारी से उठने के बाद तो आप और भी तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही हैं नेहा जी। क्यों मेरी सहेली पर नीयत खराब करते हो इस बुढ़ापे में, मीरा ने पति को टोका। लो, सारी जवानी तो तुमने दाएं बाएं देखने नहीं दिया, अब इस बुढ़ापे में तो बख्श दो। उनकी इस बात पर जोर का ठहाका लगा। सौम्या ने बड़ी तत्परता और उत्साह से उन सबका स्वागत किया। कॉफ़ी नाश्ता के बाद वह अक्षय अभय से बातें करने लगी। मैंने अक्षय की ओर दृष्टि घुमाई। ऊंचा लंबा अक्षय, चेहरे पर शालीन मुस्कुराहट, दम्भ का नामो निशान नहीं, हंसमुख मिलनसार स्वभाव, सब सौम्या के साथ कितना सटीक लगेगा, मैं सोचने लगी। डॉक्टर साहब और मीरा के साथ बातें करते हुए मेरे मन का जोर अक्षय और सौम्या की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए बैठा था। मैंने अक्षय की आंखों में सौम्या के लिए प्रशंसा के भाव तैरते देख लिए। मन थोड़ा आश्वस्त हुआ, परंतु अभी सौम्या की प्रतिक्रिया देखना बाकी थी। बातों के बीच ही सौम्या ने कुशलता से खाना मेज पर लगा दिया। डॉक्टर साहब और मीरा तो सौम्या के सलीके से परिचित थे ही, सौम्या के मोहक रूप और दक्षता से अक्षय पर भी काफ़ी प्रभाव डाला। खुशगवार माहौल में खाना खत्म हुआ तो अक्षय ने कहा, आंटी आपसे मिले और आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए बहुत दिन हो गए, आज की यह शाम बहुत दिनों तक याद रहेगी। विदा होने तक अक्षय की मुग्ध दृष्टि सौम्या पर टिकी रही और सौम्या हंसती बोलती भी बीच बीच में कुछ सोचती सी लगी, मानो बड़े असमंजन में हो। चलते चलते डॉक्टर साहब ने मीरा को छेड़ा, मैडम आप सिर्फ खाना ही जानती हैं या खिलाना भी? मीरा ने उन्हें प्यार भरी नज़रों से घूरा और झट से मुझे और सौम्या को दूसरे दिन रात के खाने का न्योता दे डाला। मेरे लिए तो यह मूंग मांगी मुराद थी, अक्षय और सौम्या को समीप करने के लिए। दूसरे दिन जब सलभ जी आए तो सौम्या ने कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। फिल्म के लिए जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा, आज मीरा आंटी के यहाँ जाना है माँ के साथ, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह थोड़ी देर बैठने के बाद चले गए। मैं भीतर ही भीतर पुलकित हो गई। मुझे लगा कि प्रकृति शायद स्वयं सौम्या को समझा रही है और मैं भी यही चाहती थी। दूसरे दिन शाम को मीरा के यहाँ जाने के लिए तैयार होने से पहले मैंने सौम्या से कहा, सौम्या आज तू गुलाबी साड़ी पहन ले। कौन सी? वो जॉर्जेट की जरी किनारी वाली? हाँ हाँ वही। इस साड़ी के लिए हमेशा ना नुकुर करने वाले सौम्या ने आज चुपचाप वही साड़ी पहन ली। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। गुलाबी साड़ी में खूबसूरत सौम्या का रूप और भी निखर आया था। ना चाहते हुए एक बार फिर मेरी दृष्टि उसके ऊपर चली गई। अब अलग थकी सी कुछ क्षण तक मैं अपने मोहक सलोनी बेटी का अप्रतिम अनुपम निर्दोष सौंदर्य चेहरा देखती रही। चलिए न माँ, क्या सोचने लगी, सौम्या ने ही उबारा था इस स्थिति से। मीरा के घर पहुँचते पहुँचते हल्की सांझ गिराई थी। डॉक्टर साहब, मीरा, अक्षय सभी लॉन में ही बैठे थे। अभय शायद अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। हम दोनों जब उनके समीप पहुंचे तो सभी की दृष्टि कुछ पल के लिए सौम्या पर स्थिर हो गई। मैंने अक्षय की ओर देखा तो पाया कि मंत्रविद से सम्मोहित उसकी आंखें पलक झपकना भूल सौम्या को एकटक निगारे जा रही थी। अरे भाई, इन्हें बिठाओगे भी कि तुम लोग भी खड़े खड़े ही विदा कर दोगे? डॉक्टर साहब ने सम्मोहन भंग किया। अरे हाँ हाँ, बैठो नेहा, मीरा ने कहा और फिर हाथ पकड़कर अपने पास ही सोम्या को भी बिठाते हुए बोली, नेहा आज मेरी नज़र सोम्या को जरूर लगेगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरी भी, डॉक्टर साहब ने जोड़ा। सोम्या शर्मा उठी, अंकल क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हो? इसलिए कि तू और लंबी हो जाए, उन्होंने पट से कहा और ज़ोर से हंस पड़े। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मीरा कॉफ़ी बनाने उठी थी, पर सोम्या ने तुरंत उन्हें बिठा दिया। कॉफ़ी मैं बनाती हूँ आंटी, आप लोग बातें कीजिए। हाँ हाँ, मैं भी यही चाह रहा था बेटी, इनके हाथ का काढ़ा पीने से बेहतर है ठंडा पानी पीकर संतोष कर लिया जाए। डॉक्टर साहब ने मीरा को तिरछी दृष्टि से देखकर कहा तो हम सभी हंस पड़े। सोम्या उठी तो अक्षय ने तुरंत कहा, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। दोनों को साथ साथ जाते एक डॉक्टर साहब बोले, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। सच, मीरा ने समर्थन किया। फिर मुझसे बोली, नेहा सोम्या मुझे और इन्हें बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय भी उससे प्रभावित है, क्योंकि अभी तक तो शादी के नाम पर 36 बहाने बनाता था, परंतु कल जब मैंने सोम्या के लिए पूछा तो मुस्करा कर रह गया। अब अच्छी नौकरी में भी आ गया है, मुझे इसकी शादी करनी ही है। नेहा अगर कहे तो अभी मंगनी कर देते हैं, शादी भाई साहब के आने पर कर देंगे, वैसे तू सोम्या से पूछ ले। हर्ष के अतिरिक्त से मेरी आंखें भर आई। मीरा ने मुझे किस मनोस्थिति से उबारा था इसका रंच मात्र भी आभास नहीं था। भरे गले से मैं उससे बोली, मेरी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा मीरा, मैं नहीं जानती थी, उसे क्या पूछूं? अक्षय जैसा लड़का, ऐसे सास ससुर, इतना अच्छा परिवार, सब मुझे तो घर बैठे हीरा मिल गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस बुद्धू अक्षय के हिस्से में ऐसा चांद का टुकड़ा आएगा, मीरा बोली। और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी हसीन समझिन मिलेगी, डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा। तो हम सब एक बार फिर हंस पड़े। तभी एकाएक चौंक पड़े थे डॉक्टर साहब, अरे भाई यह कबूतरों की जोड़ी कॉफ़ी उगा रही है क्या अंदर? तब मैं और मीरा रसोई की तरफ चली, पर द्वार पर ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मीरा ने मेरा हाथ धीरे से दबाकर अंदर की ओर इशारा किया तो मैंने देखा अंदर गैस पर रखी हुई कॉफ़ी उबल उबल कर गिर रही है और सामने अक्षय सोम्या का हाथ थामे धीमे स्वर में कुछ कुछ कह रहा है। सोम्या की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें शर्म से झुकी हुई थी और पतले गुलाबी होठों पर मीठी प्यारी सी मुस्कान थी। मैं और मीरा धीमे कदमों से बाहर चली आई। उफनती नदी का चंचल बहाव प्रकृति ने सही दिशा की ओर मोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।